ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की नेता रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी।
मुख्यमंत्री के साथ ही 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें परवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनावों में शालीमार बाग सीट पर जीत हासिल की थी। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और दिल्ली की दूसरी महिला भाजपा मुख्यमंत्री बनी हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पत्रकारों से बातचीत में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप दिल्ली में कार्य करेगी। पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज शपथ लेने से पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए दिल्ली को दोबारा समृद्ध बनाने का अवसर है। श्री सिरसा ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार के प्रति कड़ा रुख अपनाएगी। दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की नेता रेखा गुप्ता को नया मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में औरंगाबाद औद्योगिक शहर ऑरिक को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इससे मराठवाड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। आज छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि शहर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें श्रमिकों और निवासियों के लिए आवासीय क्षेत्र, अस्पताल और विश्वविद्यालय का विकास शामिल है। इसके अलावा नवाचार को बढ़ावा देने और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए एक कौशल विकास केंद्र तथा शुरुआती चरण के व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप इनक्यूबेशन हब स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कल रात जौनपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में कम से कम 8 तीर्थयात्रियों की जान चली गई और 32 अन्य घायल हो गए। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ ने मीडिया को बताया कि पहला हादसा उस समय हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने एक एसयूवी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में झारखंड से 5 लोग मारे गए जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग वाराणसी से अयोध्या जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इसी मार्ग पर एक अन्य हादसे में डबल डेकर बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में दिल्ली के 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई जबकि 27 अन्य घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सभी यात्री दिल्ली के थे जो वाराणसी, चित्रकूट और प्रयागराज की यात्रा के बाद अयोध्या जा रहे थे। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल का शुभारंभ किया। ये पायलटों के लाइसेंसिंग और नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारत ईपीएल लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय क्षेत्र में हल्की से तेज बारिश और बर्फबारी तथा पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। कल से 23 फरवरी के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। आज उत्तराखंड में आंधी और गरज के साथ हल्की ओलावृष्टि की भी संभावना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण में रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम का मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल रात कराची में न्यूजीलैंड ने पिछले चैंपियन पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।